the witness only.
ये जो सही करने का मामला है वो बेसमेंट है,
वो सुनिए, लेकिन आपकी दोबारा से शुरू से थोड़ा सा यहाँ से आप जानना है उम्र का हैराम वो अब रिकॉर्ड हो जाएगा ना।
نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصفا والمروه من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا
مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم। जब हम यहां से निकलेंगे तो एहराम बांधना यहां से भी जायज है और मस्जिद मीकात पर भी जायज है। मस्जिद मीकात यहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर ज़ुल्हुलैफा है, वहां एक मस्जिद बनी है जिसको मस्जिद मीकात कहते हैं। मदीने वालों का मीकात और एहराम बांधने की हद जो है वो वही मस्जिद है, वहीं से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा, वहीं से लोग एहराम बांधते हैं। और वो जगह अगर बगैर एहराम बांधे हुए आप बाहर उधर चले गए मक्के की तरफ तो दम वाजिब हो जाता है। बगैर एहराम के मक्का जाना उस जगह से ये दम को वाजिब कर देता है, और अगर कोई दम से फ्री होना चाहता है फिर उसे लौट कर आकर वहां से एहराम बांध कर जाएगा तब दम उसका खत्म होगा। बहरहाल आप यहां से एहराम बांधो या मस्जिद मीकात से, एक अच्छा रास्ता यह है कि आप यहां से गुस्ल कर लें, एहराम की चादर पहन लें और जो सिले हुए कपड़े उतार करके अपने सूटकेस या थैली में डाल लें ताकि वहां पर थैली लटकाने की जरूरत ना पड़े। यहां से उतरे हुए कपड़े सब अपने अपने ठिकाने आप लगा दो और एहराम की चादर पहन लो, जैसा कि मौलाना ने बताया इस तरह से एहराम की चादर आपको पहन करके वहां पर जाकर दो रकात नफल पढ़िए, और दो रकात नफल इस तरह पढ़ें कि आपका सर ढका हुआ हो, वही एहराम की चादर आपके सर पर हो, और दो रकात नफल की नियत करके एहराम का इरादा करके दो रकात आप पढ़िए। अफजल यह है कि पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़िए और दूसरी रकात में कुल हो अल्लाह अहद पढ़िए, ये अफजल है। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो रकात पढ़ने के बाद आप फौरन सलाम फेरने के बाद ढके हुए सर को खोल लीजिए, और खोलने के बाद उम्रे की नियत कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिरहा ली व तकब्बलहा मिन्नी, ये अरबी में अफजल है। इसका तर्जुमा यह है कि मैंने उम्रे की नियत की, ऐ अल्लाह उम्रा मेरे लिए आसान कर दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा ले, ये अरबी का तर्जुमा है। अगर आपको अरबी याद ना हो तो आप अपनी उर्दू जबान में, गुजराती जबान में, इंग्लिश जबान में, जिस जबान में चाहें आप ये अल्फाज का मफहूम अदा कर सकते हैं। ये आपकी नियत हो गई, और नियत के बाद फौरन एक मर्तबा लब्बैक कहना वाजिब है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमदा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये एक मर्तबा कहना मर्दों को नॉर्मल बुलंद आवाज से और औरतों को पस्त आवाज से कि दूसरे न सुने, इतनी आवाज हो कि वो खुद सुन सके। औरतों के लब्बैक में आवाज ज्यादा बुलंद करना जायज नहीं है, और मर्द बुलंद आवाज से लब्बैक कहे। एक मर्तबा कहना वाजिब है और तीन मर्तबा कहना ये सुन्नत है। लब्बैक आपने कह लिया तो हमारी माँ बहनें और मर्द जितने हैं वो एहराम में आ गए। असल में एहराम इसी का नाम है, चादर पहनने का नाम एहराम नहीं है। चादर इसलिए पहनता है आदमी कि देखने वाला समझ जाए कि ये एहराम की हालत में है, चादर का नाम एहराम नहीं है। नियत दो रकात नमाज पढ़कर नियत करके लब्बैक कहना इसका नाम है एहराम। अगर किसी ने नियत की और लब्बैक नहीं पढ़ी तो उसका एहराम ही नहीं होगा। अब अगर उमरा करेगा तो उमरा भी अदा नहीं होगा, इसलिए लब्बैक नियत के साथ लब्बैक होना जरूरी है। तो लब्बैक अगर किसी को याद न हो तो बराए मेहरबानी वो लब्बैक याद कर ले, और अगर न याद कर सका अपनी शामत आमाली से तो किसी अपने साथ वाले से कह दे तू लब्बैक बोल और मैं उस लब्बैक को दोहरा लूं। ये जरूरी है। बहुत से लोग नियत करके और चले जाते हैं, लब्बैक नहीं बोलते, उनका उमरा भी नहीं हुआ एहराम भी नहीं हुआ। तो लब्बैक नियत के साथ आपने कर लिया, ये आपका एहराम हो गया। अब एहराम की सारी पाबंदियां आप पर लागू हो गई। पाबंदियों में से खास तौर से यह है कि आप अपना सर नहीं ढक सकते, मुंह पे कपड़ा नहीं लगा सकते। औरतों को इजाजत है सर भी ढकने क्या, लेकिन औरतें भी मुंह पर कपड़ा नहीं लगाएंगी। उनको हुक्म यह है कि ऐसा वो एक टेप लगा लें ताकि नकाब अगर डालें तो वो चेहरे से टच ना हो, अलग रहे। वजू करने के बाद बहुत से लोगों को देखा कि एहराम की चादर से वो अपना मुंह पोंछने लगते हैं, ये बहुत बुरी चीज है और इससे सदका वाजिब हो जाता है। इसलिए एहराम की चादर से या दूसरे कपड़े से वजू करके मुंह पोंछना ये जायज नहीं है। हाँ, हाथ वगैरह आप ये कपड़े से पोंछ सकते हैं, सिर्फ चेहरे को बचाना है। इसी तरह से कुछ लोगों को आदत है दाढ़ी खुजाने की या बार बार यूं करने की, उससे बाल टूटता है, इसका भी हमेशा याद रखना चाहिए। अगर कहीं खुजली भी हो गई तो हुक्म यह है कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता खुजाया जाए। औरतों को भी ये चाहिए, मर्दों को भी ये चाहिए, ताकि बाल टूटने न पड़े। अगर बाल बहुत ज्यादा टूट गए कि तिहाई के 1/3 के हिसाब से मोछ के बाल इतने निकल गए या दाढ़ी के बाल या सर के बाल, तब तो दम लग जाता है। लेकिन अगर 20-25-50 बाल निकल गए तो उस पर दम नहीं है बल्कि सदका है। सदके का मतलब यह है कि ज्यादा बाल निकल गए हैं तो एक सदका फितर अदा कर दिया जाए, 2 किलो 45 ग्राम गेहूं या यहां के रेट से उसकी जो कीमत है वो फुकरा और मसाकीन को दे दिया जाए। बहरहाल तो इस तरह से आप अपने बदन को खुजाएं नहीं, और बदन पर अगर मैल हो तो उसको छुड़ाने की इजाजत नहीं है। अगर आपको नहाने की भी जरूरत है तो सिर्फ पानी आप बहा लें कि पूरे बदन पर पानी बह जाए, साबुन लगाकर रगड़ रगड़ करके, इसकी भी इजाजत हालत एहराम में नहीं। और एक पाबंदी ये है कि इत्र खुशबू वगैरह न खुद लगा सकते हैं और न इत्र लगी हुई चीज को आप छू सकते हैं। और बहुत से लोग वो हैं कि जो हालत एहराम में काबे को जाकर के छूते हैं, खुला रहता है तो उसमें इत्र बहुत ज्यादा लगा रहता है, वो हाथों में लग जाता है। अगर इतना इत्र लग गया कि देखने में नजर आ रहा है तो दम वाजिब हो जाएगा। इसलिए हालत एहराम में काबे को छूना, हाथ रगड़ना, ये अकीदत अपनी जगह पर है। एहराम की हालत में हो तो आप इसे परहेज करें। तो ये एहराम की पाबंदियां हैं। वैसे गाली गलूच, झगड़े लड़ाई, वो तो हमेशा मना है, और एहराम की हालत में और ज्यादा इसको मना किया गया है। खास तौर से अल्लाह ताला फरमाता है वला फसूका वला जिदाला वफला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज, जब हज का एहराम बांध लो, यही हुक्म उमरे का है, तो न बेहूदा बात जबान से निकालो, न लड़ाई झगड़े की और ख्वाहिश नफ्स को उभारने वाली बात, ऐसी आशिकाना बात भी करने की इजाजत नहीं है, ऐसे अशार भी नहीं कि जिससे आदमी की नफ्सियात बढ़के, ये सब बहुत बुरा है। इसलिए ऐसी एहराम की हालत में औरतों को बगल में दबाना, इसकी भी इजाजत नहीं है। हाँ, तवाफ करते वक्त अगर आपने इस नीयत से कि औरत गुम न हो, हाथ पकड़ के करना चाहिए, लेकिन बेहतर यह है कि शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर हालत एहराम में तवाफ न करे, या हाथ पकड़ भी लिया है तो इसे दबाना या ऐसा करना उसको बार बार, ये इंसानी ख्वाहिशात को उभारता है। इसलिए हाथ पकड़ करके अगर आप न करें तो यही बेहतर है, क्योंकि शैतान हमेशा नफ्स को उकसाता रहता है। तो औरत अलग से तवाफ करे हालत एहराम में, और मर्द हालत एहराम में अलग से तवाफ करे, और जब एहराम न हो तो आप हाथ पकड़ करके, वो भी बिल्कुल जहन को साफ करके आप तवाफ कर सकते हैं। ये सब पाबंदियां एहराम की मर्दों को भी चाहिए और औरतों को भी चाहिए। इसी तरह हालत एहराम में लीमू खाना या सूंघना या खुशबूदार फल खाना, ये मकरूह है। उससे भी जैसे कि संतरा है और क्या कहते हैं उसको, मौसम्बी, मौसम्बी है, ये खुशबूदार फल हैं, इसके भी खाने से आप बचें। अगर खा लिया तो दम तो नहीं आएगा, लेकिन कराहत जरूर होगी, मकरूह होगा, ऐसे फलों से भी आप बचें। लौंग, इलायची वगैरह जो मुंह में रख करके खाते हैं, ये अगर खाया उसने, लौंग है, इलायची है, दारचीनी है, ये खुशबू की चीजें हैं, उसने खा लिया तो इससे दम लाजिम है। हाँ, दारचीनी, इलायची और लौंग वगैरह सालन में डालकर पका लेते हैं तो पका लेने के बाद उसका इस्तेमाल जायज है, लेकिन कच्ची दारचीनी, लौंग, इलायची खबरदार हालत एहराम में न चबाएं, और अगर चबा लिया तो उससे दम लाजिम हो जाता है। ये सब एहराम की पाबंदियां हैं। और एहराम के बाद आप जितना चाहें लब्बैक पढ़ें। लब्बैक इस एहराम की का खास जिक्र है, और उस वक्त लब्बैक जब बंदा खुलूस दिल से कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो उधर से रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ये कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो अल्लाह फरमाता है लब्बैक या अब्दी लब्बैक या आप कहते हैं मैं अल्लाह तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, तो रब फरमाता है बंदा मेरी रहमत तेरे पास हाजिर है। तो ये बहुत बड़ी इबादत है, और लब्बैक की इबादत ये हर जगह नहीं मिलेगी, उसके लिए एहराम है और खास तौर से यहाँ आना है। इस तरह से लब्बैक के अंदर जो जिक्र है लब्बैक है, और लब्बैक जब भी आप बोलें तो एक मर्तबा बोलकर खामोश ना हो जाएं, बल्कि तीन मर्तबा बोलना ये मुस्तहब और मसनून है। और इसी तरह से अगर लब्बैक के अलावा दुरूद पाक आप पढ़ें कसरत से, तो ये भी बहुत बड़ी इबादत है। दुरूद तो हर जगह हर इबादत में नूरुन अला नूर है। एक मर्तबा एक सहाबी आए और कहने लगे हुजूर मैं दुरूद पाक पढ़ना चाहता हूँ तो कितना पढ़ूं? तो हुजूर वो सहाबी ने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं जितने वजीफे पढ़ता हूँ उसमें 1/3 दुरूद पाक पढ़ूं और 2/3 में वजीफे पढ़ूं। तो हुजूर फरमाते हैं अगर 1/3 से कुछ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उन्होंने कहा 2/3 दुरूद पढ़ूंगा और 1/3 वजीफा पढ़ूंगा। तो हुजूर फरमाते हैं अगर इसमें भी बढ़ा दो तो अच्छा है। तो वो समझ गए कि हुजूर ये चाहते हैं कि पूरा वक्त दुरूद ही पढ़े। कहने लगे हुजूर पूरा वक्त मैं दुरूद पढ़ूंगा, कोई वजीफा नहीं पढ़ूंगा। तो हुजूर ने फरमाया यकफी का, अब ये हर दम दुरूद पढ़ना तेरी हर मुश्किल को आसान कर देगा और तेरी हर उलझन के लिए काफी है। تجھے اور کوئی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, یکفی کا, یہی تیرے لیے کافی. تو درود پاک ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ اسے ہمیشہ یاد رکھیں. پھر آپ یہاں سے چل کر کے مکہ پہنچیں گے, آپ نے بتا دیا ہوگا, مکہ آپ پہنچیں گے تو زیادہ گڑبڑ مت کیجئے گا, اور یہ بھی مت سوچئے گا کہ حضرت جائیں گے تب, کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کمزوری بہت ہے, ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں لیکن مولانا جائیں گے, اور اگر میری طبیعت ٹھیک رہی تو انشاءاللہ ساتھ میں چلوں گا, نہیں تو میں 12 گھنٹے کے بعد 8 گھنٹے کے بعد آرام کر کے پھر میں عمرے کے لیے نکلوں گا. وہاں آپ سامان رکھیے, انشاءاللہ راستے میں کھانا دے دیا جائے گا, کھانا کھا لیجیے گا, وہاں پہنچیے, پہنچنے کے بعد اچھی طرح سے آپ وضو وغیرہ کر کے مولانا کی قیادت میں, اور یہ فقیر اگر صحیح سالم رہا تو آپ کے ساتھ جائیں گے. جب ہم کعبے کی طرف چلیں تو زیادہ باتیں وغیرہ نہ کریں, نظر نیچی کیے ہوئے آرام سے لبیک پڑھتے ہوئے ہم وہاں پہنچیں, اور جب اب حرم شریف میں پہنچے تو خاص بات یاد رکھیے, فرمایا گیا ہے کہ پہلی نظر کعبے پر جب پڑتی ہے اور اس وقت بندہ جو دعا کرتا ہے اس کی پوری ہو جاتی ہے. تو آپ ایک اچھی دعا جو سب سے اہم ہو یہ دل میں رکھیے, اور جیسے ہی کعبے پر نظر پڑے وہ دعا آپ یاد دعا کر لیجئے. ہمارا تو طریقہ یہ ہے کہ سب سے اچھی دعا ہم یہی سمجھتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں بھی آخرت میں ہر جگہ بھلائی آتے, یہ ایسی قرآنی دعا ہے کہ اس میں دنیا بھی آ گئی اور دین بھی آ گیا. تو کچھ نہ ہو تو کم سے کم اتنا آپ پڑھ کر کے دعا مانگیے, اس کے بعد پھر اپنے لیے, عالم اسلام کے لیے, بال بچوں کے لیے, صحت و سلامتی کے لیے, اپنے نیک بننے کے لیے, دوسرے رشتہ داروں کو نیک بننے کی, یہ سب دعائیں آپ تھوڑی دیر کر کے پھر وہاں چلیں. تو وہ جگہ جہاں پر طواف کیا جاتا ہے وہ گول دائرہ ہے, سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے. جب آپ مطاف میں اتریں تو مطاف میں اترتے وقت آپ سیدھا قدم مطاف میں ڈالیں اور یہ پڑھیں, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے, اگر آپ کو یاد نہیں ہوگا, میں رہوں گا تو نہیں تو مولانا رہیں گے یا مولانا عبد القادر رہیں گے, یہاں بہت سے حافظ بھی ہیں, یہ زور سے پڑھ دیں گے, آپ لوگ بھی اس کو دوہرا دیں گے. یہ پڑھ کر کے مطاف میں آپ اتریں, اور مطاف میں اترنے کے بعد فوراً آپ اپنے احرام کی چادر سیدھے بغل میں کر کے اور اس کا پلو بائیں کندھے پر ڈال دیں, یہ آپ کا سیدھا کندھا کھلا رہے گا. اور یہاں سے لبیک پڑھتے ہوئے پھر آپ مطاف میں اس پوائنٹ پر پہنچیے جہاں پر حجر اسود ہے, اور حجر اسود کے بالکل سیدھ میں گرین لائٹ بھی لگا ہے, اس کو بھی دیکھ لیجئے, اور حضر اسود کا چاندی کا چوکھٹا ہے وہ بھی چمکتا ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. اور اس طرح آپ کھڑے ہوں اگر بھیڑ نہ ہو کہ آپ کا یہ سیدھا کندھا حضر اسود کی طرف ہو اور یہ کندھا حضر اسود سے تھوڑا آؤٹ ہو, اس طرح کھڑے ہو کر کے آپ 7 چکر طواف کی نیت کیجئے, اور نیت کرنے کے بعد جیسے مولانا نے بتایا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اور حجر اسود کی طرف اشارہ کیجئے, اور اشارہ کرنے کے بعد آپ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد السلام علیکا یا رسول اللہ کہیے, یا السلام علیکا رسول اللہ, دونوں پڑھ سکتے ہیں, کر کے آپ اشارہ کر کے اپنے کانوں تک ہاتھ لے کے آئیے, اور پھر ہتھیلی کو بغیر آواز کے آپ چوم لیجئے اور تھوڑی حرکت کیجئے تو یہ اب آپ کا طواف شروع ہو گیا سیدھی جانب سے. اور طواف کرتے وقت خبردار خبردار بار بار کعبے کی طرف دیکھنا یا ادھر دیکھنا یہ سب مکروہات میں سے ہے. کعبے کو اس وقت دیکھنا عبادت ہے جبکہ آپ طواف کے اندر نہ ہو, फिर खूब जी भर के काबे को देखते रहिए। आज हमने देखा है कि लोग तवाफ करते हैं और बार बार काबे को घूम करके देखते हैं। आप इस तरह से सामने नजर रखिए और वहां से चलते चलते अगर दुआएं याद हैं तवाफ की तो दुआ पढ़ लीजिए, और नहीं तो दुरूद पाक पढ़िए, पहला दूसरा कलमा पढ़ लीजिए। और कुछ याद ना हो तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार पढ़ लीजिए। हर चक्कर में इसी तरह से आप जब फिर हजरे अस्वद की तरफ आएंगे, अब काबे को देखिए और सीना उसकी तरफ करके फिर इस्तेलाम करके हाथों को चूमिए, और चूम करके फिर दूसरा चक्कर इस तरह से, फिर हजरे अस्वद पॉइंट पर आए। जब जब आप आए हजरे अस्वद के पॉइंट पर, दूर से आप ग्रीन लाइट को जहन में रखें, जब ग्रीन लाइट आ जाए तो ग्रीन लाइट की तरफ पीठ कर लें और काबे की तरफ सीना करके और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहके और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा चक्कर इस तरह से हो गया। उसके बाद मस्जिद में जहां आराम से सुकून से नमाज पढ़ने की जगह मिल जाए वहां आकर के दो रकात वाजिब तवाफ पढ़िए, और उस वक्त आपका सर खुला रहेगा, सर अहराम का पल्लो सर पर रखने की इजाजत नहीं है। दो रकात पढ़ने के बाद फिर आप हाथ उठा करके अगर रो कर दुआ करो, नहीं तो हुजूर फरमाते हैं जैसे रोने वालों की सूरत बना लो, वही तुम्हारे लिए अल्लाह ताला को पसंद है। तो इस तरह से गिड़गिड़ा कर अपने लिए, बाल बच्चों के लिए, आलम इस्लाम के लिए, सब मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। सिर्फ अपने लिए दुआ हरगिज मत करना, हुजूर ने कहा अपने लिए सिर्फ दुआ करने वाला बखील है। इसलिए सब मुसलमानों के अमन व आफियत की दुआ करो। जो मुसलमानों में नेक है उसके सदके में आपकी भी दुआ कबूल होगी, उसका भला तो अपनी जगह पर होगा, उसके सदके में आपका भला होगा। इस तरह से दुआ करने के बाद आप जमजम देख लीजिए, जमजम पीजिए जैसा कि मौलाना ने बताया है। फिर वहां से चलिए तो वो एक है बेसमेंट, जिसमें आने जाने का पुराना ही जमाने का वो हिस्सा है, और जो उधर बना हुआ है उधर तो बहुत कम लोग जाते हैं, तो हम लोग आपको बता देंगे कि बेसमेंट का रास्ता किधर से है, आप अंदर जाकर के तवाफ कीजिए। और अगर बेसमेंट के ऊपर आप गए तो वहां पर पुराना हिस्सा तोड़ दिया गया है, और आने का रास्ता तो पुराने में है, जाने का सफा से जाने का रास्ता तो पुराना है, लेकिन मरवा से आने का रास्ता वो नया बन गया। सफा से जाने का जो रास्ता है वो नया हो गया है, और मरवा से आने का रास्ता जो है वो पुराना है। तो इसलिए नए रास्ते में आप जाएंगे तो वो आपका तवाफ नहीं होगा। उलमा ने
सही
वो सफा मरवा का तवाफ अय्यत तवफा भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो सफा मरवा के दरमियान आप जो घूम रहे हैं सही कर रहे हैं वो आपका चक्कर शुमार नहीं होगा। और ये आजकल बड़ी परेशानी हो गई, बेचारे लोग जानते नहीं, इसलिए बेसमेंट एक मर्तबा आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब भी उम्रा करने के लिए आएंगे तो आपको सही करना है तो बेसमेंट में चले जाइए, उसमें रश भी कम होता है, बड़े सुकून से ठंडा ठंडा रहता है वहां जाकर के आप, तो इनको बेसमेंट बता दीजिएगा, वहीं पर आप लोग तवाफ करें, ऊपर जाने की कोशिश मत करना। समझ गए, चलो ऊपर देखेंगे, बाद में जाके खूब देखिए, लेकिन तब उसका सही करने के लिए जो आप चक्कर लगाएंगे वो इस बेसमेंट में जाकर सफा से शुरू कीजिए। जब आप सफा पर पहुंचे तो वहां काबे की तरफ मुंह करें और काबे का इस्तेलाम करें, और फिर वहां सात चक्कर सफा मरवा के दरमियान सही करने की नीयत करें। और अगर ये आयत याद है इन सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अवितमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफा बिहिमा वमन ततवआ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अगर आपको याद नहीं है मौलाना होंगे या हम होंगे तो हम जोर से पढ़ देंगे, आप लोग उसको दोहरा लीजिएगा। हाफिज लोगों को तो याद ही है, सब याद है ना सब। तो ये आप लोग पढ़िए, आपके साथ जो रहें उनको पढ़ा दीजिए ये पढ़ करके, और फिर आप काबे से अपना सीना फेर करके सफा से मरवा की तरफ जाइए, और मरवा पर जा करके वहां थोड़ी देर काबे की तरफ मुंह करके रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरते हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार ये मुख्तसर दुआ करके अब फिर आप वहां से आप चलिए। और सफा मरवा के दरमियान में दो जगह ग्रीन लाइट लगा हुआ है जिसको मीलैन अखजरैन कहते हैं। जब आप सफा से चलेंगे तो ग्रीन लाइट एक इधर होगा एक उधर होगा। ये इसलिए लगाया गया है कि यही वो जगह है जहां हजरत हाजरा दौड़ी थी। हर चक्कर में आपको एक ग्रीन लाइट से दूसरे ग्रीन लाइट तक दौड़ करके जाना। दौड़ने का मतलब ये नहीं कि कबड्डी खेल रहे, बल्कि दौड़ने की कैफियत पैदा कीजिए, दूसरों को धक्का ना लगे। अगर रश ना हो तो दौड़ के जाइए, और रश अगर है तो तेजी के साथ चलिए। औरतों के लिए दौड़ने की इजाजत नहीं है, वो अपने नॉर्मल चाल से जैसे चलती हैं वो चलेंगी। जब ग्रीन लाइट आ जाए आप नॉर्मल चाल से चलिए, मरवा पर पहुंचकर दुआ कीजिए, फिर वहां से आप सफा की तरफ चलिए, फिर ग्रीन लाइट मिलेगा वहां से दौड़ करके दूसरे ग्रीन लाइट तक आइए। हर चक्कर में इस तरह से दोनों ग्रीन लाइट के बीच में आपको दौड़ना है। इस तरह से दौड़ करके आपने जो सात चक्कर लगाए तो सात चक्कर लगाना ये आपका मरवा पर खत्म होगा, सफा से शुरू होगा और सातवां चक्कर मरवा से मरवा पर खत्म होगा। कुछ लोग ला इल्मी में एक चक्कर समझते हैं कि सफा से गए और फिर घूमकर सफा पर आए तो एक चक्कर, इस तरह 14 चक्कर मेरे भाई हो जाएगा। कई लोगों ने इसकी गलतियां की हैं, ये गलती आप लोग मत कीजिए। सफा से चलें मरवा पर एक चक्कर, मरवा से चलें सफा पर दो चक्कर। इस तरह से सफा से शुरू होगा, मरवा पर आपका ये सही का चक्कर खत्म होगा। जब खत्म हो जाए तो आप वहां दुआ मांगिए, और कहीं आसपास में जगह मिल जाए तो मुस्तहब यह है कि यहां भी दो रेकात नफल आप पढ़ें। दो रेकात नफल पढ़ करके दुआ मांगना बड़ी कबूलियत का वक्त होता है। उस वक्त दुआ मांग करके आप फिर वहां से चल करके अब जहां भी नाई की दुकान मिले वहां आप अपना सर मुड़वा लीजिए। सर मुड़वा लिया, या अगर बड़े बाल है तो मशीन भी चलवा सकते हैं। तो इस तरह से आपके उम्रे का पूरा प्रोसीजर खत्म हो गया। अब आपकी पाबंदियां जो एहराम की थी वो भी खत्म हो गई हैं। अब आप आकर के नहा धो करके अपना सिला हुआ कपड़ा पहन लो। अब आप मोकले हो गए, आपकी जबान में आजाद हो गए। अब आपको जब भी तवाफ करना है आप जा करके तवाफ करते रहें, मस्जिद हराम में नफल पढ़ें, नमाजें अदा करें, कुरान मजीद पढ़ें। वहां की वहां के औकात को बर्बाद ना करें। और आपको खरीदी करना है तो सबसे अच्छी खरीदी का वक्त जो है धूप में जाने के बजाय आप ईशा की नमाज पढ़ के खाना उना खा करके निकलिए, सब दुकानें खुली रहती हैं। क्यों मौलाना, सही है? ठीक है मौलाना, सब गली कूचे के रास्ते आप लोगों को बता देंगे, उसके गाइड ये हैं और इसके गाइड मैं हूं। तो इस तरह से आप वहां खरीदी भी कीजिए, लेकिन जिक्र व अस्कार में भाई ऐसे अवकात हमेशा नहीं मिलते हैं। आप इस तरह से वहां पर बार बार तवाफ कीजिए। आला हज़रत फरमाते हैं मक्के की सबसे बड़ी इबादत तवाफ करना, और जो लोग चाहें तो मस्जिद आयशा जाकर के अपने नाम से, अपने मरहूमीन के नाम से, जिंदों के नाम से जितना उमरा करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मस्जिद आयशा, मस्जिद आयशा वो जगह है जो हरम शरीफ से बाहर है। वहां जाकर के आप एहराम बांध करके लब्बैक पढ़ते हुए आइए, और जिस तरह हमने तवाफ और सही का जिक्र किया है इस तरह से तवाफ और सही करके आपके सर पर बाल हो न हो यूं ही उस तरह फिराना आपके लिए वाजिब है। जब तक उस तरह नहीं फिराएंगे आपका एहराम नहीं खुलेगा, और औरतें जो है वो मुड़ाएंगी नहीं, एंड बड़ी परेशानी हो जाएगी। उनके लिए सिर्फ ये है कि वो अपनी चोटी के तीन हिस्से करें, एक आगे और एक दाएं एक बाएं। आगे की चोटी को ये अपने उंगली में लपेट करके कैंची से काटते, फिर इधर का उंगली में लपेटे काटते, इधर का उंगली में लपेटे काटते। कुछ औरतें करती हैं यहां से करके काट के चलेंगे। एक साल एक औरत आई, बोले हजरत बार बार उमरा करके तो मेरे बाल छोटे हो जाएंगे। मैंने जाति का एक और रोजाना उमरा कर, किसने बताया? एक उमरा हो गया काफी,
तवाफ कर
जाओ और तवाफ करते रहो। तो जिसको अपने बाल से प्यार है वो खाली तवाफ करे, और जो उमरा करना चाहती है वो जाए। तो बाल तो कटवाना वाजिब है, अगर नहीं कटवाएंगे तो दम लाजिम हो जाएगा, इसलिए बाल का कटवाना जरूरी है। तो ये मसला औरतें भी याद रखें, आप लोग भी याद रखें, जितना उम्रा हो सकता है करें, और नहीं करना चाहते हैं तो फिर मुसलसल तवाफ करें। एक तवाफ हमारा नौजवान करता है तो थक जाता है, बोले थक गया। दो तवाफ तो मुश्किल से होता है। अरे हम लोग जवानी में आते थे 29 साल, आप यकीन मानो लगातार 12-12 तवाफ करता था। एक एक दिन में 18-18 तवाफ किए। कुछ लोग होलसेल में नफिल पढ़ते, 2-3 तवाफ करके फिर नफिल पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। रिटेल शॉप है यहाँ पर, एक तवाफ पूरा करके 2 रिकात पढ़ के फिर दूसरा तवाफ शुरू कर सकते हैं। ये गलती मत करना कि 3-4 तवाफ कर लिए उसके बाद 6-8 रिकात पढ़ लिया, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ होलसेल नहीं है, रिटेल में चलना। तो जिस तरह तरतीब बताया है उसी तरह से तरतीब से नमाज वगैरह पढ़ना है, ठीक है। और कुछ और जो मसले आप लोगों को नहीं समझ में आएगा वो आप लोग पूछ लिया कीजिएगा, हम तो है ही हैं। ये भी मुफ्ती साहब हैं, हज के मुफ्ती हैं, अगर ये ना बता सके तो मेरे पास आना।
एक सवाल है, जैसा कि जेंट्स में 2-4-6 उम्र करने
जी,
जेंट्स के अंदर बाल पूरे मुंडाने का है
तो मैंने कहा है कि पूरा बाल मुड़ाओ, और नहीं है तो वैसे ही उस तरह घुमाओ। ये नहीं कि चित्तर बित्तर, एक चेक इधर एक चेक इधर, जैसे खेत की क्यारी बनाती। वैसे 1/3 या 1/4 अगर मुड़ा दिया तो वाजिब खत्म हो गया, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा वो तो बिल्कुल मजाक बन जाएगा।